नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्यवाही में खाड़ी देशों में बमबारी की। भारत ने संवाद और कूटनीति से तनाव कम करने की अपील की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, सरकार पुडुचेरी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। नागपुर के एक कारखाने में भीषण विस्फोट में 17 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में आज शाम कोलकाता में भारत का सामना वेस्ट इंडीज से। अब समाचार विस्तार से। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। खबरों के अनुसार इन हमलों में ईरान के लगभग 40 अधिकारी भी मारे गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि ईरान के सैन्य प्रमुख और रक्षा मंत्री की हवाई हमले में मौत हो गई है। खबर के अनुसार जनरल अब्दुल रहीम मूसावी, रक्षा मंत्री जनरल अजीज नजीर जादे और ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड तथा प्रमुख सुरक्षा सलाहकार अली शामखानी बैठक के दौरान हमले में मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस बीच नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के शोक में तेहरान, इस्फहान और मशहद में हजारों लोग एकत्र हुए। ईरान का सरकारी मीडिया उनकी मौत को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए एक निर्णायक बलिदान कह रहा है। इस बीच ईरान में नेतृत्व परिवर्तन और राष्ट्र सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई की हत्या ईरान और अमेरिकी जनता के लिए न्याय संगत है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कहा कि ये ईरानी नागरिकों के लिए सत्ता फिर से अपने हाथ में लेने का अभूतपूर्व अवसर है। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे ऐसे सभी विदेशी नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है जो अपने वीजा के विस्तार या अपने ठहराव को नियमित करना चाहते हैं। ये परामर्श पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे नागरिकों को नजदीक के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए कार्यालय की वेबसाइट boi.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। उधर चीन ने ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने तथा समझौते के लिए बातचीत करने की अपील की है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। उधर इजराइल में चीन के दूतावास ने इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों से इजराइल में सुरक्षित स्थान पर जाने या मिस्र चले जाने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका उस पर और कड़ा प्रहार करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अभी अभी कहा है कि वो आज बहुत जोरदार हमला करने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो हमला करता है तो अमेरिका पूरी शक्ति के साथ उस पर हमला करेगा। जारी घटनाक्रम के बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने आज कहा कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद देश में सत्ता परिवर्तन प्रक्रिया आज शुरू होगी। अमेरिका इजराइल के साझा हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने आज अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च किया। इस कारण पाकिस्तान के कराची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में लगभग 6 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। उधर पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले किए। ये हमले स्थानीय समय के अनुसार सुबह 5:40 पर किए गए। करीब 20 मिनट तक चले हमलों के खिलाफ अफगान बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगान अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुदुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन में निवेश से सरकार पुदुचेरी को बृहत्तर ऊंचाइयों पर ले जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पुदुचेरी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और देश के सामाजिक सूचकांक में ये सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार पुदुचेरी के आर्थिक विकास को और गति देगी। श्री मोदी ने 9 चिकित्सा कॉलेज की मौजूदगी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में क्षेत्रीय केंद्र के आधुनिकीकरण और पुदुचेरी तथा करईकलर में एक नए सघन चिकित्सा खंडों की आधारशिला रखते हुए विश्वास व्यक्त किया कि पुदुचेरी चिकित्सा पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। पुदुचेरी के बाद प्रधानमंत्री मदुरई के लिए रवाना हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सेना के जवानों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए गोलीबारी की। हालांकि ड्रोन बच निकला और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर लौट गया। पिछले 3 दिन में ये दूसरा मौका है जब सीमा पार से ड्रोन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। आशंका है कि ड्रोन का उपयोग हथियारों या नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर के राउल गांव में SBL एनर्जी लिमिटेड में एक भीषण विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विस्फोट के बाद लगी आग में 18 कामगार घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में हुए इस विस्फोट पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के निकटतम परिजन के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन उपखंड के 43 गांव बुढ़ाओं का एक दल असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर है। पासीघाट ईस्ट के विधायक निनोंग इरिंग ने इस दौरे को प्रायोजित किया है। उन्होंने कहा कि गांव बुढ़ाओं को वन्य जीव संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए और सामुदायिक त्योहारों के दौरान होने वाले अवैध शिकार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को देखते हुए परामर्शों का पालन करने की अपील की है। इन दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। दूतावासों ने किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबूधाबी के भारतीय दूतावास का टोल फ्री नंबर 800-46-342 और व्हाट्सएप नंबर 9715430-05-71 है। दूतावास का ईमेल है pbsk.dubai@mea.gov.in और ca.abudhabi@mea.gov.in। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। मैच शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इस मैच का विजेता सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। एक अन्य मुकाबले में दोपहर 3 बजे दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे आमने सामने हैं। कल सोमवार को पश्चिम एशिया में प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि ये फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर लिया गया है। बोर्ड स्थिति के आकलन करने के बाद परीक्षा की नई तारीख घोषित करेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने पात्र निर्माता आयातकों के लिए सीमा शुल्क के तुरंत भुगतान से छूट की सुविधा शुरू की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।